लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे यथार्थ मानव बंधुत्व के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने धर्म के कारण भेदभाव से पीड़ित हैं, ताकि उनके मानवाधिकारों और उनकी गरिमा को पहचाना जा सके तथा वे प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन के भागीदार बन सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। पुत्र, मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी उंगलियों में बांध लो, उन्हें अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। प्रज्ञा से कहो, तू मेरी बहन है। समझदारी को अपनी कुटुंबिनी समझो, वो तुमको पर स्त्री के जाल से बचाएगी। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 7वें अध्याय के प्रथम 5 पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या आरंभ की थी। 7वें अध्याय में प्रज्ञा को महत्व देने और प्रज्ञा का सम्मान करने को जीवन के लिए महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक बताया गया है। सूक्ति ग्रंथ के 5वें और 6वें अध्यायों में यौन अनैतिकता के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। अब 7वां अध्याय ईश्वर के वचन और पिता की प्रज्ञा को ध्यान में रखने और समझने पर जोर देने के साथ शुरू होता है। इन पदों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि माता पिता अपनी संतानों के हितैषी होते हैं, इसलिए माता पिता अथवा अभिभावकों का कहना मानना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना संतानों के हित में होता है। उनकी आज्ञाओं का पालन किया जाए और उनके अनुभवों से अपनी समझ को विकसित किया जाए। वस्तुतः श्रोताओं, माता पिता की आज्ञा पालन का अर्थ है ईश्वर के वचन पर विश्वास करना, क्योंकि माता पिता ईश वचन से ही प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि बाइबल पढ़ना लैंगिक अनैतिकता के विरुद्ध एक जादुई सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करता है तो वह 10 नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा और पर स्त्री का लालच नहीं करेगा और न ही पर धन पर अपनी नियत खोएगा। अस्तु, आज्ञाओं का पालन या नियमों के पालन का अर्थ है बाइबल पाठ द्वारा ईश नियमों को भली प्रकार जान लेना, उन्हें संजोए रखना तथा उन पर मनन करना, और सभी स्थितियों में वे आपकी रक्षा करेंगे। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि 7वें अध्याय के दूसरे पद का परिचित वाक्यांश आंख की पुतली से तात्पर्य है शरीर के अंगों का सबसे महत्वपूर्ण भाग। प्राचीन युग में हमारे पूर्वज आंख की पुतली को सेब की तरह एक गोला माना करते थे, जो मनुष्य के जीवन का अभिन्न और एक अति महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि जिस तरह से पुतली के भीतर हमारी मूल्यवान आंख सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार पिता द्वारा सिखाए गए ईश वचनों को पुत्र अपनी आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखे तथा उनका पालन करे। फिर वह कहता है उन्हें अपने हृदय के पटल पर अंकित करो। वह कहता है कि पिता की शिक्षा को यानी कि ईश वचन के श्रवण से आने वाली प्रज्ञा को व्यक्ति अपने हृदय पटल पर अंकित कर ले। उसका परामर्श है कि व्यक्ति ईश वचन के साथ एक जीवित और सांस लेने वाला संबंध बना ले। इस प्रज्ञा को वह अपनी बहन माने, उसे अपनी कुटुंबनी समझे और अपनी समझदारी को विकसित करे, क्योंकि केवल ऐसा कर ही व्यक्ति पाप के जाल से मुक्त रहेगा और अपने जीवन को साकार कर पाएगा।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां ये जमीन।
श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ के सातवें अध्याय के प्रथम पांच पदों में पिता की शिक्षा को ग्रहण करने और ईश नियमों को अपने हृदय पटल पर अंकित करने का परामर्श देने के उपरांत सूक्ति ग्रंथ का लेखक 6 से लेकर 23 तक के पदों में अपनी आप बीती बयां करता है। वह बताता है कि उसने अपनी खिड़की से बाहर झांकने पर क्या देखा। श्रोताओ, राजा सुलेमान की प्रज्ञा न केवल ईश्वर द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि पर आधारित थी बल्कि वह उनके अनुभवों पर भी आधारित थी। ऐसा संभव है कि जो कुछ सूक्ति ग्रंथ के 6 से लेकर 23 तक के पदों में बयां किया गया है वह उन कई घटनाओं का योग है जिनका अनुभव राजा सुलेमान ने खुद अपने जीवन काल में किया था। 6 से लेकर 10 तक के पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक अपनी कहानी को इस प्रकार आरंभ करता है। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से अपने झरोखे से झांका। मैंने भोले जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक को देखा। वह नुक्कड़ पर गली में घुसा और उस स्त्री के घर की ओर आगे बढ़ रहा था। उस समय दिन का प्रकाश धुंधला रहा था, रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वह स्त्री वेश्या जैसे कपड़े पहने निर्लज्ज होकर उससे मिलने आई। इन पदों में लेखक कहता है कि उसने भोले जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक को देखा। इससे यह स्पष्ट है कि पर स्त्री के जाल में वही फंसता है जो नासमझ है। सच तो यह है कि जिनके पास समझ की कमी है वे अधिक आसानी से भटक जाते हैं। उसी तरह जो प्रलोभन में पड़ जाते हैं वे अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। आगे 11 से लेकर 17 तक के पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक पथ भ्रष्ट करने वाली स्त्री के विषय में कहता है। वह चंचल और उच्छृंखल है, उसके पैर घर में नहीं टिकते, कभी गली में कभी बाजार में, वह हर नुक्कड़ पर घात में रहती है। वह उस युवक से लिपट कर उसका चुंबन करती और निर्लज्जता से उससे कहती है, मैं शांति बलि चढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं तुमसे भेंट करने बाहर निकली और तुम मुझे मिल गए। मैंने मिस्र की रंगीन छालटी से अपना बिस्तर सजाया है। मैंने अपनी शैया को गंधरस, अगरू और दारचीनी से सींचा है। श्रोताओ, जिस स्त्री की उक्त पदों में चर्चा है वह महिला आक्रामक है। वह एक शिकारी के सदृश अपने शिकार के घात में लगी रहती है और युवक का पीछा करती है। वह मोहक कपड़े पहनती, आश्चर्यजनक और चापलूसी बातें करती और परिणाम मुक्त यौन का वादा कर अपने फंदे में फंसे नासमझ युवक को फंसाती है। जानबूझकर रणनीति का उपयोग करते हुए वह युवक को जीत लेती है और उसे पाप में लिप्त होने के लिए मना लेती है। ये रणनीतियां केवल शाब्दिक नहीं होती, जब यौन प्रलोभन की बात आती है तो वे विभिन्न तरीकों से भी प्रतिध्वनित होती हैं। ऐसे खतरों से सावधान रहने से हमें उन्हें पहचानने और उनसे बचने में मदद मिलती है। 7वें अध्याय के 18वें, 19वें और 20वें पदों में लेखक पथ भ्रष्ट करने वाली स्त्री के बारे में पुनः बताता है कि वह किस तरह से अपनी बात मनवाती है। नासमझ युवक से वह कहती है, आओ हम सवेरे तक रमण करें, प्रेम का उत्सव मनाते रहें। मेरा पति घर पर नहीं है, वह एक लंबी यात्रा पर बाहर है। वह रुपए से भरी थैली लेकर चला गया और पूर्णिमा तक नहीं लौटेगा। इन पदों को प्रस्तुत कर सूक्ति ग्रंथ का लेखक सावधान करता है कि किसी की मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में व्यक्ति नहीं आए, विशेष रूप से कुलटा स्त्री की मीठी मीठी बातों से बचें। सूक्ति ग्रंथ का लेखक सतर्क करता है कि व्याभिचारिणी स्त्री की चालों के आगे झुककर लापरवाह युवक उसके जाल में फंस जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पशुधन को वध के लिए ले जाया जा रहा हो या किसी जंगली जानवर को शिकारी ने फंसा लिया हो। सातवें अध्याय के 21 से लेकर 23 तक के पदों में कहता है, वह मीठी मीठी बातों से पथ भ्रष्ट करती है, वह सम्मोहक शब्दों से बहकाती है, वह तुरंत उसके पीछे हो लेता है, बैल की तरह जिसे कसाई खाने ले जाया जा रहा है, हरिण की तरह जो फंदे पर पैर रखता जिसका शरीर बाण से बेधा जाता है, पक्षी की तरह जो जाल की ओर बढ़ता और नहीं जानता कि उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार श्रोताओं, बुद्धिमान राजा सुलेमान अपने पुत्र को शिक्षा देने के द्वारा युग युगांतर तक के स्त्री पुरुषों को स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिस पर ध्यान देना हम सब के लिए हितकर है।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस 23 जनवरी को संत पेत्रुस महागिरजा घर में ईश्वचन रविवार मनाएंगे। इस अवसर की व्याख्या नवीन सुसमाचार प्रचार को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परमथम पीठ समिति ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल की धम्म विधि में कुछ खास बातें हैं। ईश्वचन रविवार को हर साल सामान्य काल के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संत पापा फ्रांसिस ने कैथलिकों को धर्म ग्रंथ जानने के महत्व का स्मरण दिलाने के लिए 30 सितंबर 2019 को की है। धर्म विधि के दौरान पाठ पढ़ने की प्रेरिताए को लोक धर्मी पुरोहितों एवं महिलाओं को एक स्थायी एवं संस्थागत रूप में एक विशेष आदेश के साथ सौंपी जाएगी। इस विधि को ईश्वचन रविवार के दिन संपन्न किया जाएगा एवं धम्म विधि में व्यक्त किया जाएगा। पहले के अनुसार यह प्रेरिता सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वे पौत्र पुरोहिताय संस्कार लेने वाले हैं। नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धम्म पीठ समिति द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, हालांकि कलीसिया में अच्छी तरह इस स्थापित अभ्यास ने पुष्ट किया है कि बपतिस्मा संस्कार प्राप्त सभी लोक धर्मी मिनिस्टरों को इससे प्रदान किया जा सकता है जो योग्य हैं, चाहे वे पुरुष हों अथवा स्त्री, जैसा कि कलीसिया के कानून नंबर 230 में पहले ही अप्रत्यक्ष रूप में लागू है, जिस पर संत पापा ने थोड़ा संशोधन किया है। समारोह के दौरान संत पापा कई लोक धर्मियों को नए प्रचारक के रूप में नियुक्त करेंगे। बयान में कहा गया है कि दोनों प्रकार के मिनिस्टरों की नियुक्ति हेतु दिव्य उपासना एवं संस्कारों के अनुष्ठान के लिए गठित परम धम्म पीठ धम्म संघ द्वारा तैयार रीति के अनुसार किया जाएगा। इस धम्म विधि को पहली बार मनाया जाएगा। उपदेश के पहले उम्मीदवारों के नाम पुकारे जाएंगे तथा उन्हें कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बयान में बतलाया गया है कि उपदेश के बाद उन्हें पाठ पढ़ने की प्रेरिताएं सौंपी जाएगी। उन्हें पौत्र बाइबल प्रदान किया जाएगा, जिसकी घोषणा करने के लिए वे बुलाए गए हैं। दूसरी ओर प्रचारकों को पुनर्स्थापित एक क्रूस प्रदान किया जाएगा। यह प्रेरित क्रूस है, जिसका प्रयोग सबसे पहले संत पापा पॉल 6वें ने, उसके बाद संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भी की थी, उस सेवा के मिशनरी स्वभाव को याद करने के लिए जिससे वे संपन्न करने वाले थे। बयान में यह भी प्रकट किया गया है कि जो लोग पाठ पढ़ने की प्रेरिताएं प्राप्त करेंगे वे दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान, घाना और इटली के विभिन्न हिस्सों के लोक धर्मी प्रतिनिधि होंगे। प्रचारक की प्रेरिताएं प्राप्त करने वालों में अमेजोन के पेरू से 2 और ब्राजील से दो लोग धर्मी होंगे जो प्रचारक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। घाना के कुमासी से महिला लोक धर्मी, पोलैंड से एक महिला और एक पुरुष लोक धर्मी तथा स्पेन से भी प्रतिनिधि चुने गए हैं। स्वास्थ्य आपातकाल के कारण यात्रा में कठिनाई होने के कारण कोंगो और युगांडा के दो विश्वासियों की उपस्थिति संभव नहीं हो पाएगी। 18 से 25 जनवरी तक ख्रिस्ते एकता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है। संत पापा फ्रांसिस ने ख्रिस्ते एकता के सही अर्थ पर प्रकाश डालते हुए कहा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना एवं इस दुनिया जिसको ईश्वर बहुत अधिक प्यार करते हैं के प्रति उदार होने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना, यही ख्रिस्ते एकता का सबसे ठोस रास्ता है। संत पापा फ्रांसिस ने भवन निर्माण के राष्ट्रीय संघ के 55 सदस्यों से वैटिकन में मुलाकात करते हुए उन्हें अपना संदेश दिया। भवन निर्माण के राष्ट्रीय संघ के सदस्यों ने कुछ महीनों पहले संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। संत पापा ने कहा कि यह इतिहास की याद करने का अवसर है जो इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में ले जाता है। भवन निर्माण के राष्ट्रीय संघ का जन्म 1946 में हुआ था जो एक उद्यमी संघ है और जो निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे किसी भी आकार की इतालवी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। संत पापा ने गौर किया कि इस समय संघ कठिन दौर से गुजर रहा है जिसके कारण प्रेरणा एवं स्थापना के विकल्प की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। संत पापा ने उनके कार्यों के अनुरूप सुसमाचार की शिक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि सुसमाचार बतलाता है कि यीशु ने शिक्षा देने के लिए भवन निर्माण के प्रतीक का प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए संत लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 6 जहां यीशु उन लोगों के ढोंगी और आलसी व्यवहार को प्रकट करते हैं जो सिर्फ बोलते और करते नहीं। भवन निर्माण करने वालों की बुद्धिमानी का उदाहरण देते हुए वे ढोंगी लोगों की तुलना बालों में बिना नींव के घर बनाने वालों से करते हैं, लेकिन फिर वे उन भवन निर्माणकर्ताओं की ओर इंगित करते हैं जो नदी के किनारे घर बनाते और जानते हैं कि घर पहले बाढ़ में बह न जाए। जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता, जानते हो वह किसके सादृश्य है? वह उस मनुष्य के सादृश्य है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। संत पापा ने कहा कि यह छवि और भी रोचक है यदि हम गौर करें कि निर्माता न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के संभावित बाढ़ को भी सोचकर निर्माण करता है। यीशु की शिक्षा में विश्वासी वह है जो अपने आप को ख्रिस्त दिखाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक ख्रिस्त के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। संत पापा ने कहा कि प्रतिस्पर्धा केवल काफी नहीं है, प्रतिस्पर्धा को बेहतर और अच्छा करने के लिए एक प्रोत्साहन होना चाहिए, न कि हावी होने और बाहर करने की इच्छा। यही कारण है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और आर्थिक विकल्पों में पारदर्शिता मूल है। भवन निर्माण संघ के सदस्यों को सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हुए संत पापा ने कहा कि पिछले साल काम करते हुए कई लोगों की मौत हो गई थी। भवन निर्माण के दौरान भी कई त्रासदियां हुई हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सच्चा धन व्यक्ति है, उसके बिना कोई कार्य समुदाय का निर्माण नहीं किया जा सकता, न ही व्यवसाय अथवा अर्थव्यवस्था। कार्यस्थल की सुरक्षा का अर्थ है मानव संसाधनों की रक्षा करना जो ईश्वर और सच्चे उद्यमी दोनों की नजरों में मूल्यवान है। हम जितना अधिक काम का कद्र करते हैं उतना ही अधिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं सुंदरता में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य आपातकाल का प्रभाव संत पापा फ्रांसिस एवं परमधम पीठ रोमी कार्यालय के वार्षिक आध्यात्मिक साधना पर भी पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी समाप्त नहीं होने के कारण इस साल भी रोमन कुरिया की आध्यात्मिक साधना आरिचा के दिव्य स्वामी आश्रम में नहीं होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।